कृष्ण
हरे
कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। हिंदी में अंग्रेजी में आप सब लोगों का स्वागत है वैदिक कल्चरल सेंटर प्रभुपाद जी का। नाम है भक्ति वेदांत, तो ये भक्ति वेदांत कल्चरल सेंटर है। कौन सा वेदांत? वो वेदांत जिसमें भक्ति का वर्णन है, वो शिक्षा यहां दी जाती है। वेदांत का मतलब, वेद का मतलब जानकारी होती है, और वेदांत का मतलब जहां वेद का अंत होता है। सब शास्त्रों का सार व्यास देव ने वेदांत सूत्र में, सूत्र के रूप में रखा, और उसी को समझाने के लिए व्यास देव ने अपने ही वेदांत के ऊपर भागवत की टीका लिखी। तो भक्ति वेदांत का मतलब भागवत। वेदांत में जो भक्ति का वर्णन है वो श्रीमद् भागवत है। तो वेदांत के ऊपर जो टीका है वो श्रीमद् भागवत है, और ये टीका किसी और ने नहीं की है, ये टीका उसी ने की है जिसने वेदांत लिखा है। तो व्यास देव की अपनी टीका वेद के ऊपर है, और वो है श्रीमद् भागवत। इसलिए भक्ति वेदांत प्रभुपाद जी को जब वो गृहस्थी थे तभी उनके गुरु भाइयों ने ये टाइटल उपाधि दी थी भक्ति वेदांत, क्योंकि प्रभुपाद जी वेदांत भक्ति के मार्ग से लोगों को भागवत के मार्ग से, भागवत धर्म से बहुत बड़ा लिखने के द्वारा, पुस्तक के रूप में और प्रचार के रूप में बहुत ज्यादा सफलता उनको मिल रही थी। तो सब लोगों ने कलकत्ता में मिलकर प्रभुपाद जी को भक्ति वेदांत की उपाधि दी थी दीक्षा संन्यास से पहले। अभय चरणार विंद भक्ति वेदांत प्रभु कहते थे। तो भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद का वेदांत भगवत गीता, भागवत और चैतन्य चरितमृत है। तो आज हम रविवार के दिन यहां फ्लैक में भागवत ही हमारे सामने है, तो इसके पहले ही अध्याय के ऊपर तीन चार श्लोक है उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, आप अपने आप को थोड़ी देर के लिए ले चलो गंगा जी के तट के ऊपर। गंगा आपने देखी नहीं, आप तो मंबासा देखा है, गंगा सागर देखा है। गंगा जो बहती है उसको गंगा कहते हैं। ग ग का मतलब बहने वाली, फ्लोइंग। गंगा बहती है, और गंगा कहां से निकलती है? गंगा भगवान श्री विष्णु के चरण को धो के निकली है। गंगा का दूसरा नाम है विष्णुपदी। विष्णुपदी का मतलब विष्णु के चरण से निकली। कब निकली भगवान विष्णु के चरण से? जब वामन देव ने अपने शरीर को बड़ा किया। वामन का मतलब होता है छोटा, और यह मॉरिशस में जिनका नाम वामन है वो सब लंबे हैं। नाम वामन खुद लंबा है। वामन का दूसरा नाम है त्रिविक्रम। एक एक पांव बढ़ाते हुए बढ़ता जाए। तो भगवान वामन देव का पांव ऊपर जब जा रहा था तो पांव के अंगूठे से भौतिक संसार पूरा हो गया, तो एक पर्दा है उसमें छेद हो गया, तो होल हो गया उसमें। ऊपर जो पानी था कारण सागर का, उसने भगवान के चरण के अंगूठे को धोया। तो वो जैसे नीचे गिरा तो ब्रह्मा जी ने उसको अपने करमंडल में ले लिया, अपने लोटे में ले लिया, तो उसका नाम हो गया गंगा। और वहां से वो पानी द्रुलोक में गिरा और द्रुलोक से फिर विमानों में, एरोप्लेन में पानी लेकर देवता देवलोक में लाए गंगा को। जैसे आप लोग गंगा का पानी एयर मॉरिशस में जहाज में लेकर गंगा सागर में डाल दिया तो वो गंगा हो गया, तो ऐसे देवता द्रुलोक से गंगा के जल को अपने विमानों में लेकर आ गए देवलोक में। और देवलोक से फिर तीन जनरेशन, तीन पीढ़ी महाराज सगर की, एक महाराज हुए हैं सूर्य वंश में, उनका नाम था सगर। सगर का अर्थ होता है, स का मतलब साथ और गर का अर्थ होता है विष, पॉइजन के साथ जिसका जन्म हो, विष के साथ जिसका जन्म हो उसका नाम है सगर। सगर जो महाराज सगर के पिता तपस्या करने चले गए थे वानप्रस्थ लेकर, लेकिन पत्नी गर्भवती थी, तो पति का देहांत हो गया, पत्नी पति के साथ सती हो रही थी अग्नि में। पहले स्त्रियां पति के जाने के बाद दुनिया में रहना पसंद नहीं करती थी, अभी तो पति जाता है तभी सिंगार करके बाहर निकलती। पति के सामने कपड़े ठीक नहीं हो कोई बात नहीं, बाहर जाना है तो जरा सुंदर होके जाना है, किसको दिखाने जाते हो? अरे आपकी सुंदरता तो पति के लिए है, उसको प्रसन्न करने के लिए, उसके सामने जैसे फटे फटे कपड़े है मनी ऐसे जाके मुंह लटकाए खड़ा हो ना, बाहर जाना है तो सुंदर होके जाना है। ये असुरी प्रकृति है। तो पत्नी सती हो रही थी तो ऋषि ने कहा कि नहीं, आपके गर्भ में बच्चा है, आपको सती होने का नेम नहीं है। तो बाकी रानियों को पता लगा कि महाराज बाहुक, मेरे ख्याल में उसका नाम था, इसको बेटा हो गया तो ये रानी, तो इसका बेटा राजा हो जाएगा, ये राजमाता हो जाएगी, हमको तो कोई पूछेगा नहीं। उन्होंने उसको विष दे दिया, लेकिन क्योंकि वो तपस्या की हुई राजा थी, उसका अंश था, तो विष एक तरफ पड़ा था, बच्चा जब पैदा हुआ तो एक तरफ पॉइजन पड़ा था विष, एक तरफ बच्चा पड़ा था, तो बच्चे का नाम हो गया सगर, विष के साथ जन्म हुआ सगर। महाराज सगर के एक तो पुत्र हुआ अंशमंजस, उसका बेटा हुआ अंशुमान, और एक उसके 60,000 पुत्र थे, दो रानियां थी। तो एक यज्ञ किया था अश्वमेध, अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को इंद्र चुरा के ले गया और जाके कपिल ऋषि के आश्रम में बांध दिया। कपिल ऋषि का आश्रम कहाँ है? गंगा सागर में। आप कहेंगे गंगा सागर है ना, इसको गंगा सागर बोलते हैं ना, असल में भारत में गंगा सागर बोलते हैं जहां गंगा जाके हिंद महासागर में मिलती है, तो उसको उस जगह का नाम है गंगा सागर। और ये कहावत है, बाकी सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। एक बार गंगा सागर का तीर्थ करने जाना चाहिए। जनवरी के महीने में जब मकर संक्रांति होती है तब गंगा सागर में बहुत बड़ा मेला लगता है। बहुत सर्दी होती है लेकिन लाखों 100,000 के लोग उधर जाते हैं स्नान करने के लिए। गंगा सागर जाना पड़ता है, पहले समुद्र को पार करना पड़ता है बोट में, और उसके बाद कुछ चलना पड़ता है सड़क के ऊपर 30 किलोमीटर, तब गंगा सागर पहुंचते हैं। उसका नाम है गंगा सागर। और वहां कपिल देव, कौन से कपिल देव? देवहूति माता के बेटे कपिल देव। देवहूति माता को उपदेश देने के बाद वो जाकर गंगा सागर के ऊपर आस्थान बना के बैठ गए और अभी भी वहां रहते हैं ये मान्यता है, क्योंकि कपिल सिद्ध महात्मा है, सिद्धानाम कपिलो अस्मि, भगवत गीता में भगवान कहते हैं सिद्धों में मैं कपिल देव हूं। तो आज भी कभी आप गंगा सागर जाएं तो वहां कपिल देव का मंदिर बना के रखा है। और क्योंकि कपिल देव के मंदिर में फिर राजा सब अयोध्या से जाते थे, सूर्यवंशी थे, तो है बंगाल में वो, लेकिन वहां भी महात्मा अयोध्या के रहते हैं और वही उस मंदिर का संचालन करते हैं जो कपिल देव का मंदिर है। तो उसके 60,000 बेटे घोड़े को ढूंढते हुए गए और कपिल देव के आश्रम में घोड़े को बंधा हुआ देखा। उन्होंने समझा कपिल देव ने चुराया है, तो वो कपिल देव को मारने के लिए गए। कपिल देव ध्यान से आंख खोली और उनकी आंख की दृष्टि पड़ने से सारे भस्म हो गए, 60,000 बच्चे वहां राख हो गए, एशेज हो गए। वो एक साधु महात्मा के ऊपर अपराध करने जा रहे थे, बेटा मिला, अरे घोड़ा भी तो आया नहीं, बेटे भी नहीं मिले। महाराज सगर बहुत चिंता में हुआ, तो महाराज सगर के बेटा था जो बड़ा, उसको देश निकाली दे दी किसी कारण से, वो तपस्वी था, वो दूसरे के बच्चों को ले जाकर और गंगा में डुबा देता था, वो समुद्र में डुबा देता था, लेकिन डुबाता नहीं था। लेकिन लोग सब कहते हैं हमारे बच्चे कहां गए, अरे सबको डुबा दिया, ये आपका बेटा डुबाता है। फिर 5-7 दिन के बाद, महीने के बाद उनको वापस लाता था और बच्चे कहते कि हमारे को भैया अंजवसमान ने बहुत खिलाया पिलाया, हमको खुश रखा, घुमाने के लिए ले गया था, वो ऐसे समझते थे। लेकिन लोगों ने कहा इसलिए उसको तो निकाल दिया राज से बाहर महाराज ने। उसका एक बेटा था, उसका नाम था अंशुमान। अंशुमान घोड़े को ढूंढने के लिए निकला। अंशुमान कपिल ऋषि आश्रम में जाके पहुंचा, कपिल देव को प्रणाम किया, घोड़े को वहां देखा, बोला महाराज आपके चरणों में प्रणाम है, मैं महाराज सगर का पोता हूं, ये घोड़ा हमारे यज्ञ का है, हमारे ताऊ जी हमारे अंकल इसको ढूंढने के लिए निकले थे, वो कहां? कपिल देव ने कहा वो तो मैंने आंख खोली थी, वो मुझे मारने के लिए आ रहे थे, वो तो ये जो मिट्टी का ढेर पड़ा है ये तुम्हारे सारे अंकल है। तो बोला इनका उद्धार कैसे होगा, ये तो इनका मृत्यु अकाल मृत्यु है। अकाल मृत्यु का मतलब समय के ऊपर नहीं मरे हैं, ये तो ऐसे मरे हैं कि इनका कल्याण नहीं, और फिर एक साधु ब्राह्मण के साथ से मरे हैं, ब्राह्मण की दृष्टि मरे हैं, इनकी तो अधोगति होगी, इनका उद्धार कैसे होगा? तो कपिल देव ने रास्ता बताया कि इसके लिए आप गंगा जी को धरती के ऊपर लाओ और इसके ऊपर गंगा का जल पड़ेगा तो इनका उद्धार होगा। अब महाराज सगर का ये बेटा अंशुमान, सगर ने राज छोड़ा, अंशुमान राजा बना, पोता अंशुमान राजा अपने बेटे को देकर दिलीप को चला गया तपस्या करने गंगा को लाने के लिए। उनके जीवन समाप्त हो गया, गंगा नहीं आई। महाराज दिलीप राज अपना छोड़ के अपने बेटे भागीरथ को दिया, दिलीप ने जाकर तपस्या की, गंगा नहीं आई। तीसरी जनरेशन में भागीरथ महाराज अपने बेटों को राज देकर चले गए तपस्या करने के लिए हिमालय में, उस वक्त गंगा जी प्रकट हुई। माता गंगा अपने असली रूप में प्रकट हुई। देखो गंगा भारत में आप देखेंगे तो नदी के रूप में बहती है, ये तो गंगा हमारी आंखों से दिखती है, ये नदी है, ये रिविया है बड़ी, आपके यहां तो रिविया इतनी है, पिचित रिविया है, पिचित है। वो गंगा कितनी बड़ी है, हिमालय से निकलती है, निकलती है पूरे भारत के अंदर से, चल के जाके गंगा सागर तक जाती है, कोई 1500 किलोमीटर से ज्यादा लंबी उसकी दूरी है। यहां से दूरी भारत की कितनी है, कितना हजार, कितने कुछ हजार किलोमीटर है शायद, इतना लंबा वो गंगा जी है, कोई छोटी नदी नहीं है, पूरी भारत को क्रॉस करती। तो ये गंगा जी का आदि भौतिक रूप है जो आंखों से दिखता है, आदि दैविक रूप में गंगा देवी है, उसका अपना वाहन है, उसके ऊपर चढ़ के आती है, और उसका वाहन क्रोकोडाइल है, मगरमच्छ के ऊपर चढ़ के आती है गंगा देवी। और गंगा देवी भीष्म पितामह की माता जी है, उसका नाम है गंगा पुत्र, तो वो देवी के रूप में गंगा भीष्म की मां है। और आध्यात्मिक रूप से गंगा ब्रह्म द्रव्य है, जैसे विष्णु पत्नियों में आती है गंगा, आध्यात्मिक रूप में भगवान के चरण से निकली है, तो आदि देविक रूप में, देवी के रूप में गंगा प्रकट हुई भागीरथ के सामने और कहा, मैं आपसे प्रसन्न हुई, आपके तीन जनरेशन ने, तीन पीढ़ी ने, तीन आपके परिवार के लोगों ने तपस्या की है, बोलो क्या वरदान चाहिए। मां गंगा हमारे पूर्वज महाराज कपिल के दृष्टि से भस्म हो गए थे, उनका उद्धार करना है, आप वहां चलिए। बोला मैं देवलोक से नीचे आऊंगी तो मैं इतनी तेजी से गिरूंगी वेग से कि पाताल में चली जाऊंगी, तो वे मेरे वेग को कौन पकड़ेगा, एक बात धारण कौन करेगा। दूसरी बात, जब मैं यहां बहूंगी शहर के मतलब धरती के ऊपर आऊंगी, यहां बहुत पापी लोग हैं, वो आके मुझ में स्नान करेंगे, मुझे अपवित्र कर देंगे, तो मेरा उद्धार कौन करेगा। ये दो प्रश्न गंगा जी ने सामने रख दिए। अब भागीरथ जी फिर चले गए गंगोत्री से हिमालय में केदारनाथ में, भगवान शंकर का उपासना किया, भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए। भोलेनाथ ने पूछा, मैं आपसे प्रश्न हुआ भागीरथ, क्या चाहिए। बोला मां गंगा धरती पे आना चाहती है लेकिन उसके वेग को, उसके फ्लो को कोई नीचे सह नहीं सकता है, आप कृपा करके उसको धारण करो। शंकर जी ने कहा अच्छा ठीक है, और फिर शंकर जी ने गंगा के फ्लो को अपने जटा में धारण किया, और इसलिए शंकर का एक नाम है गंगाधर, गंगाधर, गंगा को धारण करने वाला। तब ऋषि वहां बैठे थे तपस्वी, उन सब ने कहा महाराज आप चिंता मत करो, गंगा के अंदर पापी जब नहाएंगे तो जब साधु संत जाके नहाएगा तो गंगा का सारा पाप धुल जाएगा। तो गंगा बड़ी खुश होती है जब साधु कोई स्नान करने जाता है, पापी तो रोज जाते हैं स्नान करने लेकिन साधु कभी कभार जाते हैं। तो ये गंगा के अवतरण की स्टोरी है। फिर गंगा नीचे उतरी, आगे भागीरथ का रथ चल रहा था, पीछे गंगा चल रही थी, और एक जगह पे पीछे मुड़ के देखता है भागीरथ गंगा नहीं है, अरे कहां चली गई। एक ऋषि था उसका नाम था जानू ऋषि, वो जानू ऋषि बैठा था, गंगा जो आगे आई तो उसका पाठ पूजा का सामान था वो सब बहा के ले गई और उसने गंगा को पी लिया, गंगा को पी गया ऋषि। वो वापस आके देखा ये तो ऋषि बैठा है जानू, महाराज गंगा बोला वो तो पी लिया मेरा, देखो सारा सामान कहां ढूंढू मैं, वो देखो अभी वापस आ गया ना, डूब गया, बहा के ले जा रही थी। महाराज तीन पीढ़ी ने तपस्या की है तब नीचे आई है, हमारे पूर्वजों का उद्धार करना है। तो जानू ऋषि ने गंगा जी को वापस दे दिया, तो गंगा जी को जानू की पुत्री कहते हैं। दूसरा नाम गंगा का है जाह्नवी, हम रोज गाते हैं शाम को गौरंगा महाप्रभु की आरती में, जाह्नवी तटवने जगमन लोभा, जाह्नवी गंगा का नाम है। गंगा जब बंगाल में एंटर होती है फिर उस तरफ तो उसका नाम जाह्नवी हो जाता है, और जब हिमालय से नीचे उतरती है तब उसका नाम भागीरथी, उसका नाम भागीरथी है वहां, और नीचे उतर के आती है भागीरथी। भागीरथी पहले आके मिलती है, भागीरथी पहले आके मिलती है, भागीरथी जब मिलती आके अलकनंदा से, तब से उसका नाम गंगा हो जाता है, फिर वो गंगा के नाम से नीचे आती है। और जहां ये दोनों आपस में मिलती हैं उस स्थान का नाम है देवप्रयाग। आप लोग कभी जाके ये सब दर्शन करके आए, जो करके आए वो भाग्यशाली है, नहीं तो कभी अप्रैल मई से लेकर सितंबर तक 6 महीने खुले होते हैं बद्रिक आश्रम के और ये सब जगहों के दरवाजे। और आपके यहां बहुत सुंदर है, मॉरिशस बहुत सुंदर है, ग्रीन है, लेकिन वहां बहुत ग्रीन है वो पर्वत, बहुत सुंदर है, और पर्वतों के ऊपर कैसे खेती की हुई है, ऐसे छोटे छोटे बना के जैसे सीढ़ी होती है ऐसे खींचे खेती की हुई है, और पर्वत आपके पर्वत उनके सामने ऐसे हैं जैसे कहां गया छोटा बच्चा मेरे सामने बैठा था, इतना छोटा है, इतना मेरे सामने कोई एक आपके फोमी छोटी सी फोमी आ जाए तो मैं और फोमी में कितना अंतर है, आपके पर्वतों में वो मुरिया पर्वत में और उस पर्वत में इतना अंतर है, ये फोमी जितना है उसके सामने। लेकिन वो बहुत सुंदर है, कभी जाना चाहिए, बहुत उसका सुंदर दर्शन करना चाहिए। बर्फ से ढके हुए हैं, देखेंगे सुबह सुबह सूरज उगेगा तो बर्फ चांदी जैसी दिखती है और ऊपर सूरज की किरणें पड़ते हैं। रात को चांद की रात में अगर उनको देखेंगे तो सिर्फ जैसे चांदी चांदी पूरी पर्वतों के ऊपर पड़ी है, ऑल स्नो कवर्ड पीक्स ऑफ माउंटेन ब्यूटीफुल। कभी दर्शन करने जाना चाहिए। आप में से कोई गया करके आया तो फिर एक बार प्रोग्राम बनाओ, छुट्टियों में एक 15 दिन का छुट्टी लेकर कभी हिमालय का दर्शन करो। भगवद गीता में भगवान कहते हैं स्थावराम नाम हिमालय अस्मि, जो स्थावर चीजें अपनी जगह से हिलती नहीं है उनमें मैं हिमालय हूं। तो भगवान अपनी विभूति बताते हैं हिमालय को, और ये देवभूमि है। यहां आप जाके देखें तो अभी भी बहुत लोग अच्छे हैं, कोई बदमाशी बेईमानी नहीं है, और देवताओं की भूमि, उस भूमि का नाम ही देवभूमि है। और 6 महीने देवता, अभी भी वहां 6 महीने देवता ही पूजा करते हैं, और 6 महीना सिर्फ मानव के लिए खुलता है 6 महीना, फिर बर्फ इतनी होती है कोई जा नहीं सकता है वहां। तो ये बात कहां से आ गई थी, गंगा की कथा तो करनी थी, भागवत की गंगा कहां से आ गई? हाँ जी, हरे कृष्णा। कहां से कथा ये शुरू की, क्यों की शुरू की? कहां चलो गंगा के तट पे, हमने कहा था कहां गंगा के तट पे चलना है। गंगा जहां पहाड़ों से उतर के नाचती कूदती जब प्लेन में आती है सीधी, उस स्थान को हरिद्वार कहते हैं। हरि का मतलब भगवान, कौन भगवान? नर नारायण भगवान। जो नारायण भगवान है ऊपर, उसके घर का दरवाजा, द्वार का मतलब क्या है? दरवाजा, द्वार, हरि के घर का द्वार। तो अगर आप उस गंगा, वो हरिद्वार से ऊपर गंगा के किनारे किनारे जाओगे तो सीधे हरि के पास पहुंच जाओगे, इसलिए उसको पैसे कहते हैं हरि के घर का दरवाजा, हरिद्वार। हरिद्वार में गंगा प्लेन में आती है, और हरिद्वार से गंगा कोई 50 किलोमीटर चलेगी तो वहां गंगा जहां से बहती है उधर पहले हस्तिनापुर हुआ करता था, जहां पांडवों की राजधानी थी। और हस्तिनापुर से थोड़ी दूरी पे एक स्थान है, उसका नाम है सुक्कताल। गंगा जी की धारा के तट के ऊपर एक स्थान है, हस्तिनापुर के बहुत निकट में है। गांव का नाम अभी भी हस्तिनापुर, एक छोटा सा विलेज है उसका नाम हस्तिनापुर है अभी भी भारत में, उसी जगह पे है। और उसके पास में ये जगह है, उसका नाम है सुक्रताल। और ये वो जगह है जहां भागवत पहली बार सुखदेव गोस्वामी परीक्षित जी को सुना रहे थे। तो कभी सुक्रताल भी जब जाएंगे तो देखा जा सकता है। नीचे गंगा बह रही है, थोड़ा सा ऐसे रेज एरिया है, पहाड़ नहीं है लेकिन हाइट पे थोड़ी सी एक एरिया है, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा वट वृक्ष है। एक वट वृक्ष का मतलब जैसे पीपल का वृक्ष है, ऐसे कितना बड़ा वृक्ष है नहीं तो भी 100-200 मीटर चारों ओर उसकी डैली है, इतना बड़ा वृक्ष है। उसके नीचे सुखदेव गोस्वामी बैठे थे और वहां सब ऋषि बैठे थे, तो उस आश्रम को अभी भी जाके देखा जा सकता है। तो अब हम बात ये कर रहे थे गंगा के तट पे सुक्कताल में, जहां भागवत की कथा हो रही थी, वहां हस्तिनापुर से चलकर परीक्षित महाराज आए थे। और ये समाचार जैसे ही फैल गया चारों ओर, किसी ने किसी को फोन नहीं किया था, किसी ने किसी को चिट्ठी नहीं लिखी थी, लेकिन परीक्षित महाराज राजपाट छोड़ दिया, ये समाचार एक के कान से दूसरे कान तक पहुंचा, और फिर इस धरती के ऊपर और धरती के बाद ब्रह्मलोक तक ये समाचार। आजकल हम कहते हैं हमारी टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट है, हम फोन करते हैं अभी अमेरिका का पता कर लेते हैं, लेकिन उस जमाने में ऋषि जहां रहते थे तप लोक में, जन लोक में जहां ऋषि रहते हैं, वहां तक ये समाचार पहुंच गया था। और एकदम वो ऋषि सब अपने अपने लोकों से आने लगे, गंगा के मार्ग से आते हैं। प्रभुपाद ने लिखा कुंभ मेले में अभी भी बहुत से ऋषि हैं जो हिमालय में तपस्या करते हैं, अपने योग की शक्ति से गंगा की धारा के अंदर से आते हैं और आके यहाँ बैठ के दर्शन करते हैं। कुंभ मेले में पहचान हम नहीं पाएंगे, लेकिन अभी भी ऐसे सिद्ध पुरुष हैं जो तपस्या कर रहे हैं हिमालय में और गंगा की धारा के साथ बह के नीचे आ जाते हैं। तो वो भी ऋषि गंगा की धारा के साथ सब नीचे उतर के गंगा के किनारे पे आकर बैठे और उन सबका नाम लिखा है। उधर व्यासदेव आया था अपने आश्रम से। व्यासदेव का आश्रम कहाँ है? बद्रिक आश्रम में। व्यासदेव का आश्रम का नाम ही बद्रिक आश्रम है। बद्री कहते हैं बेर के पेड़ को, बेर होते हैं ना खाने को, क्या बोलते हैं बेर को? मासु, मासुन, मासु। तो बेर जो मासुन है वो पेड़ बहुत थे बद्री के, तो उस आश्रम का नाम हो गया बद्रिक आश्रम। वहां सरस्वती नदी बहती है, वहां से व्यासदेव चल के आए। नारद ऋषि का तो कोई आश्रम वैसे नहीं है, तो नारद जी वहां आ गए। अगस्त आए, गौतम आए, अत्रि आए, ऐसे सब ऋषियों का नाम लिखा है। ये सब ऋषि वहां आए, क्यों आए? परीक्षित महाराज अगर राजपाट छोड़ रहा है और 7 दिन के बाद परीक्षित महाराज अगर प्राण त्यागेगा तो निश्चित रूप से परीक्षित भगवान का परम भक्त है, कोई न कोई चमत्कार होने वाला है, चलो उस चमत्कार को देखेंगे। ऐसे ही जब भीष्म पितामह ने ये निर्णय ले लिया था, जब भीष्म पितामह ने ये डिसीजन लिया था कि अब मैं अपने आप को जिंदा रखना नहीं चाहता हूं, क्योंकि भीष्म पितामह को उसके पिताजी का आशीर्वाद वरदान था कि तुम अपनी इच्छा से मर सकते हो, तुम्हें कोई नहीं मार सकता। तो भीष्म पितामह ने मरने का कब मन में भीष्म पिता के आया, मरने का मन में कब आया मालूम है भीष्म पितामह को? एक भगवान अपने भक्त को कभी परिश्रम करते हुए देखता है तो भगवान का हृदय बहुत, कृष्ण का हृदय द्रवित हो जाता है। 18 दिन के युद्ध में एक दिन अर्जुन को पसीना आ गया। किस दिन पसीना अर्जुन का आया? जिस दिन भीष्म पितामह बहुत घातिक बाण चला रहे थे और कृष्ण ने देखा कि अर्जुन हाथ से पसीने को ऐसे पहुंच रहा है। अरे अर्जुन को पसीना आ गया, कृष्ण रथ से उतरे, नीचे कूदे और रथ एक एक टूटे हुए रथ का पहिया उठाया और भीष्म देव को मारने के लिए भागे। तब भीष्म देव ने अस्त्र शस्त्र नीचे रखा, बोला मरने के लिए इससे अच्छा और मौका कौन सा मिलेगा, भगवान आ रहे हैं सामने, ये दर्शन करते हुए प्राण निकल जाए तो अच्छा है। तब भीष्म पितामह ने अपने मन में मरने का संकल्प कर लिया, लेकिन मरे नहीं। ये भी स्थान कभी जाए तो कुरुक्षेत्र, जहां भगवत गीता भगवान ने कही थी वो स्थान है, वहां भी एक वट वृक्ष है, उसके नीचे वो स्थान के ऊपर वो निशान बना दिया है अभी, जहां भगवान ने भगवत गीता कही थी, उसका नाम है ज्योतेश्वर। वहां से 1.5 किलोमीटर आगे थोड़े अंदर जाएंगे तो वो जगह है, उसको कहते हैं बाण गंगा। वहां अर्जुन ने बाण मारा था और उससे गंगा प्रकट हुई थी और भीष्म देव के मुख में गई थी। तो वहां भीष्म देव का मंदिर है, जहां वो तीरों के एरो के बेड के ऊपर लेटा हुआ है, तो वो जगह भी अभी भी जाके देख सकते हैं, बाण गंगा और भीष्म देव। तो वहां भीष्म देव फिर पड़े रहे और जब भीष्म देव ने उत्तरायण हुई, उत्तरायण का समय हुआ, उत्तरायण और दक्षिणायन 6 महीने उत्तरायण होती है, 6 महीने दक्षिणायन होती है। सूर्य 6 महीने आप देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट में होगा, 6 महीने नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट में होगा, साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में कभी आप देखेंगे सूर्य यहां से निकलेगा, कभी थोड़ा यहां से होगा। तो उत्तरायण और दक्षिणायन बोलते हैं, उत्तरायण अच्छा टाइम है मरने का और दक्षिणायन अच्छा टाइम नहीं है। तो ये 8वें अध्याय भगवद गीता में इसका पूरा वर्णन लिखा है। तो जब उत्तरायण का समय आया भीष्म पितामह का, तो प्राण त्यागने का जैसे भीष्म ने सोचा, यही सारे ऋषि वहां भागते हुए आए। अरे भीष्म, अभी भीष्म प्राण त्यागने जा रहा है, ये आदमी मर नहीं सकता है, अपनी इच्छा से मर रहा है, चलो कोई चमत्कार होगा। और चमत्कार क्या हुआ? भगवान श्री कृष्ण के सबको दर्शन हुए, सबने भगवान श्री कृष्ण को साक्षात देखा और भीष्म पितामह खुली आंखों से कृष्ण की हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हुए, हाथों में बाण लगे हुए थे लेकिन कृष्ण कोई ऐसे देखते हुए खुली आंखों से कृष्ण की प्रार्थना करते हुए भीष्म दिव्यता मैंने प्राण त्यागे। बड़ी सुंदर 12-13 श्लोकों में भीष्म देव की प्रार्थना है भगवान श्री कृष्ण को अंत समय के। तो वो वही ऋषि सारे आज परीक्षित के चारों ओर आकर बैठ गए। परीक्षित ने पूछा, महाराज आप राजपाट क्यों छोड़ के आए? महाराज परीक्षित ने कहा, देखिए मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। मैंने एक ऋषि शम्यक प्यास के कारण, मुझे प्यास लग गई थी, आई वॉज थर्स्टी, और प्यास के परेशानी में दुख में, और उस ऋषि ने मेरा स्वागत नहीं किया सम्यक ने, तो मैंने एक मरा हुआ सर्प उसके गले में डाल दिया था। मुझसे बहुत बड़ा अपराध ऋषि का हो गया। फिर ऋषि के बेटे श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया है कि 7 दिन में मेरा प्राण निकल जाएगा, तक्षक सांप मुझे काटेगा। तो ये तो अच्छा ही हुआ कि ऋषि के अपराध का मेरे को फल यही मिलेगा, नहीं तो मेरे कई पीढ़ियों को नाश होना पड़ता। मुझे उसका भय नहीं है। लेकिन मैं अब बताइए आप सब ऋषि कि अब मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए? और फिर बड़े बुद्धिमता से कहते हैं परीक्षित महाराज, मैं भगवान विष्णु की कृष्ण की कथा सुनना चाहता हूं, यही मुझे आप सुनाएं। लेकिन सारे ऋषि आपस में चर्चा करने लगे। बहुत से ऋषि थे ना, यज्ञ कराना चाहिए। अरे 7 दिन में यज्ञ कैसे होगा? नहीं, पाठ करना चाहिए कोई। तो ये आपस में डिस्कस कर रहे थे क्या करना चाहिए। तब तक सुखदेव गोस्वामी वहां आके दूर से दिखाई दिए। सांवले रंग के हैं, कृष्ण का रंग है, कृष्ण रंग है, उनका भी कृष्ण जैसा ही रंग है। और कृष्ण अंदर से परमात्मा के रूप से, बाहर से गुरु के रूप में आते हैं। तो आज ये सुखदेव गोस्वामी परीक्षित के लिए वही कृष्ण आज बाहर गुरु के रूप में आ रहा है। और उस परीक्षित को पहना हुआ कपड़ा भी नहीं है, उसको कहते हैं दिगंबर। दिगंबर का अंबर कहते हैं कपड़े को, दिग कहते हैं डायरेक्शन को। क्या उसको पहना हुआ क्या था? डायरेक्शन ही उसके कपड़े थे, कुछ भी पहना हुआ था जब नंगन अवस्था में था। और बच्चे छोटे उसके पीछे हाँ हाँ हो करते आ रहे थे, और लड़कियां उसको देख रही थी, 16 साल का नंगन कैसे जा रहा। लेकिन जैसे ही परीक्षित, जैसे ही सुखदेव महाराज को देखा ऋषियों ने और परीक्षित, सब उठ के खड़े हो गए। नारद और व्यास को छोड़ के सब उठ के खड़े हो गए। तो ये बच्चे और लड़कियां तो भाग गई, बोला ये तो कोई पागल नहीं है, ये तो इसको देखकर राजा उठ के खड़ा हो गया। वो देखो तो ऋषि सब खड़े हुए, वो तो सब भाग गए। महाराज परीक्षित ने उसका स्वागत किया, स्थान दिया, बोलो आप आ गए हैं, और मैं समझता हूं भगवान श्री कृष्ण की बहुत बड़ी कृपा है कि आप यहां पधारे हैं। अब अंतिम समय मेरा है, अब मेरा प्रश्न है, आप मेरे को इसका उत्तर दीजिए। और प्रश्न कैसा है, ये भी बहुत बड़ी महानता है एक महाराज की, एक राजा की। प्रश्न में पहले पूछते हैं सब लोगों का, सब जगह और सब समय, ऐसा कोई एक काम बताओ जिससे कल्याण हो। राजा है ना, पहले अपनी प्रजा का भला चाहता है, अपना भला नहीं चाहता है। वैष्णव वो जो दूसरे का भला चाहे, दूसरे को सुख देना चाहे। महाराज परीक्षित कहते हैं सब लोगों का, इस ब्रह्मांड में, इस पूरे पृथ्वी के ऊपर सब लोगों का, सब समय, सब जगह, कोई एक आसान सी, कोई सरल बात बताओ, सिंपल बात बताओ जिससे सबका उद्धार हो जाए अथवा भगवान की प्राप्ति हो। और फिर कहते हैं जिसका मृत्यु बहुत निकट हो, मिर्यमाणाय, जिसको मृत्यु बिल्कुल निकट हो, मरने के पास खड़ा हो, उसको क्या करना चाहिए। और यहां समाप्त होता है पहला स्कंद श्रीमद् भागवत का। पहले स्कंद में सुखदेव गोस्वामी बोलते नहीं है, दूसरे स्कंद में सुखदेव गोस्वामी बोलना शुरू करते हैं। और सुखदेव गोस्वामी बोलते हुए पहले क्या कहते हैं, पहले प्रश्न का उत्तर देते हैं। पहले सुखदेव गोस्वामी बोलने से पहले ओम नमो भगवते वासुदेवाय, फिर सुखदेव गोस्वामी क्या कहते हैं, वर्यामेष्टे प्रसन्न। वरियान का मतलब वाह वाह, महाराज आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, आपका प्रश्न इतना अच्छा है, योर क्वेश्चन इज सो ग्लोरियस। हाँ, वरियाम को लिखा है वरियाम, ग्लोरियस, आपका प्रश्न इतना अच्छा है कि इसमें सब लोगों का भला है, आपने सब लोगों के भले के लिए वर्याम एष्टे प्रश्न कृतो लोक हितम निरप राजा। निरप मतलब राजा, आपने लोक के हित के लिए प्रश्न किया है। अरे मृत्यु जिसके सर के ऊपर खड़ी है उसको भी दूसरे का भला सोचता है, मरने वाला है फिर भी सबका भला सोच रहा है, ये कितनी बड़ी बात है। सुखदेव महाराज कहते हैं आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, ये प्रश्न लोक के हित के लिए। आत्मवित समत्त सम्मत्त पुंसाम श्रोतव्यादिषु यः परः, और यही प्रश्न जो आपका है यही सबके लिए सुनने के योग्य है। और सारे ही साधु संत कहते हैं ऐसे ही प्रश्न को सुनना चाहिए। प्रभुपाद जी भावार्थ में लिखते हैं कि दसम स्कंद भागवत से एक प्रश्न का एक श्लोक का भाव लिखते हैं, कृष्ण के विषय में प्रश्न पूछना, कृष्ण के विषय में सुनना और कृष्ण के विषय में बोलना, ये तीनों सबको पवित्र करते हैं जैसे गंगा सबको पवित्र करते हैं। ये उदाहरण लिखा है। आप क्या कहते हैं सुन लीजिए सुखदेव महाराज। सुखदेव महाराज कहते हैं श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र निर्णाम शांति सहस्रश, किसके लिए? अपश्यताम आत्म तत्व गृहेषु गृह मेधिनाम। अब परीक्षित महाराज ने कह दिया था हम तो संसार में फंसे हुए हैं, हमारे को क्या करना चाहिए। तो परीक्षित महाराज पहले बताते हैं कि संसार में फंसा हुआ कौन है। सुखदेव गोस्वामी कह रहे गृह मेधिनाम, दो शब्द हैं विवाहित व्यक्ति के लिए, एक एक गृहस्थ एक एक गृह मेधी। गृहस्थ का मतलब अपने स्त्री बच्चों के साथ रहे लेकिन भगवान का घर में मंदिर होना चाहिए, भगवान का घर में मंदिर होना चाहिए, रोज भगवत गीता भागवत का पाठ होना चाहिए, हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण करना होना चाहिए और भगवान का प्रसाद खाना चाहिए। ये भगवत गीता के एक श्लोक के भावार्थ में प्रभुपाद ने लिखा है। उस श्लोक में लिखा है ज्ञान वो है जो संसार के सारे बंधनों को त्याग दे, इसका मतलब स्त्री पुरुष परिवार घर को छोड़ दे। उसके लिए अंदर प्रभुपाद ने लिखा है छोड़ना नहीं, जिस घर में ये चार चीजें हैं, क्या चार चीजें हैं आप याद कर लो, घर में भगवान का मंदिर देखो, ये भी श्री श्री गौर निताय निताय गौर सुंदर किसी के घर के ठाकुर जी हैं, ये भी माता जी और सुनीता सुनीति के घर में इनकी पूजा होती है, देखो सुंदर लगते हैं कि नहीं लगते, कैसे लग रहे हैं? अच्छे लग रहे हैं ना, सुंदर कैसे वस्त्र धारण किए हैं, बहुत सुंदर उनको पगड़ी बांधी हुई है ऊपर, तो ये माला बनाई है दो दो माला एक अंदर एक बाहर, तो ये सब मेहनत से किया है ना सेवा। तो ऐसे घर में ठाकुर जी जिसके होते हैं और फिर ये घर में बैठे हैं तो इनको खिलाना पड़ेगा, पहले जो घर में भगवान बैठा हुआ है तो इनको खिलाएंगे तो बचेगा, वो प्रसाद सब खाएंगे, फिर इनकी कथा करेंगे कीर्तन करेंगे घर में, ये चार चीजें घर में हो तो वो गृहस्थी का घर है, ये चार चीजें नहीं है तो वो कौन है? गृह मेधी। और गृह मेधी की पहचान क्या है? हाउ टू रिकॉग्नाइज गृह मेधी, वो दूसरे पड़ोसी से ऑलवेज एनवियस ऑफ नेबरस। गृह मेधी, मेधी का मतलब है एनवियस, दूसरे से ऑलवेज इज एनवियस ऑफ अदर्स, हमेशा दूसरे से ईर्ष्या करेगा झगड़ा करेगा। और प्रभुपाद ने भावार्थ में लिखा है कि इस वक्त दुनिया के अंदर एक घर वाला दूसरे घर वाले से झगड़ा करता है, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से झगड़ा करता है, एक गांव वाला दूसरे गांव से झगड़ा करता है, एक देश वाला दूसरे देश से झगड़ा करता है, सारी दुनिया एक दूसरे से झगड़ा कर रही है। क्यों? क्योंकि सभी सिर्फ अपने को दुनिया में आनंद सुखी देखना चाहते हैं, अपने इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए सारे, वो ग्रह मेधी है। और परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ऐसे मूर्खों के लिए लाखों चीजें हैं जिनको वो सुनते हैं। क्या सुनते हैं? वो रेडियो भी सुनते हैं, टेलीविजन भी सुनते हैं, वो यहां की बातें सुनते हैं, वहां की बातें सुनते हैं। उनके लिए श्रोतव्यम, उनके लिए सुनने के लिए क्या है? निर्णाम सता सहस्रश है, हजारों चीजें उनके सर के दर्द के लिए। ये लोगों के लिए बहुत सी चीजें, कितने लोग सुबह सुबह लोग उठ के क्या करते हैं यहां मॉरिशस में? पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर, रेडियो, न्यूज़पेपर ही पढ़ते हैं नहीं सुबह सुबह उठ के? क्यों पढ़ते हैं? क्या लिखा है उसमें? भागवत लिखी हुई है। उठ के पहले न्यूज़पेपर क्यों पढ़ते हैं? क्यों पढ़ते हैं? कभी सोचा है? आदमी जब सुबह सवेरे उठता है ना, सुबह सत्वगुण होता है, मोड ऑफ गुडनेस होता है। सत्वगुण में आदमी कहता है कल खामखा मैंने ये गलत काम किया, ऐसे मुझे नहीं करना चाहिए था। आदमी को थोड़ा अंदर लगता है कि मुझे अच्छा बनना चाहिए। इतनी देर में पेपर आता है और पेपर को देखता है, वो इसने भी चोरी की, हाँ ये दूसरे को मारा, इसने भी लूटा, अरे मैं अकेला थोड़ी बेईमान हूं, सारे बेईमान। तो पेपर पढ़ने से आदमी को ये विश्वास होता है कि मैं अकेला बदमाश नहीं हूं, सारे ही बदमाश है। तो ये आदमी को सिर्फ विश्वास दिलाता है कि हमको बदमाश ही रहना चाहिए, सुधरने की जरूरत नहीं। सुबह सुबह जिसके घर में पेपर आता है उसका मतलब उसके सुधरने की संभावना बहुत कम है, वो नहीं सुधर सकता। क्या होता क्या पेपर में क्या लिखा होता है, क्या होता है? यहां इसने ये मार दिया, यहां इसने चोरी हो गई, इसने घर को आग लग गई, यही होता है कुछ और होता है? सुबह उठ के बस यही होता है और कुछ पेपर में होता है? अब कोई सुबह सुबह उठ के अच्छी चीज सुननी चाहिए कि ऐसा सुनना चाहिए कि किसी को मर गया, किसी को मार दिया, किसी को लूट लिया, ये सुनना चाहिए? तो ये सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ऐसे मूर्खों के लिए तो ऐसी हजारों चीजें हैं जिसके पीछे ये लोग लगे होते हैं। और कितनी सारे पेपर और मैगजीन और ये चारों ओर देखो बिलबोर्ड लगे हुए, ये लो जितनी एडवर्टाइज में चीजें हैं ना, जो बेकार चीज है उसकी एडवर्टाइज होती है। व्यक्ति तो काहे के लिए एडवर्टाइज करके खर्चा करता है? जिस जो बोर्ड पर लिखा है वो समझ लो बेकार है, कभी नहीं लेना चाहिए, ये उसकी पहचान है। एनीथिंग विच इज एडवर्टाइज इट मीन यूजलेस। अच्छी होती तो क्या जरूरत एडवर्टाइज करने की है? परीक्षित महाराज ने एडवर्टाइज नहीं की थी भागवत की, लेकिन सब ऋषि आ गए थे। अब ये बड़ी बड़ी एडवर्टाइज करते हैं क्योंकि करने वाला अच्छा नहीं है, इसलिए किसी किसी को तो बुलाना चाहिए ना। एडवर्टाइज क्यों करनी है? ताकि कथा सुनने वाला भी अच्छा नहीं है, सुनाने वाला भी अच्छा नहीं है, इसलिए आप लोग आइएगा सब लोग। अपने आप नहीं आ रहे हैं लोग, क्यों नहीं आ रहे? एडवर्टाइज की जरूरत नहीं है। तो ये हजारों चीजें हैं ऐसे लोगों के लिए, और आगे ऐसे लोगों की पहचान करा रहे हैं। सुखदेव महाराज कहते हैं निद्रया हिर्यते नक्तम, रात उनकी सोने में जाती, या तो रात को सोते हैं, नहीं तो व्यवाये न चवा वयह, या तो भोग विलास में रहते हैं, या सोएंगे या भोग करेंगे रात को, ये उनका रात हो गया। और दिन में दिवाच अर्थे हया राजन, दिन को पैसे के पीछे भागेंगे, पैसा कहां है, पैसा कहां है? कुटुंब भर क्यों पैसा चाहिए? कुटुंब भरने न च, कुटुंब का मतलब क्या है? अपना परिवार। अब उनका पेट भरना है, सुबह जाना है पैसा कमाने के लिए, रात को सोना है भोग करना है, सुबह पैसा कमाने जाना है, बस इससे ज्यादा उनका विचार है ही नहीं। अब आप देख लो दुनिया के अंदर लोग इन तीनों के अलावा और कुछ करते हैं क्या? क्या करते हैं? सुबह सवेरे उठेंगे पहले क्या करते हैं? आप लोग सोचो क्या करते हैं? पहले उठो, तैयार हो, काम पे जाना है, यही ना। क्यों काम पे जाना है? पैसा कमाना है। क्यों पैसा कमाना है? घर को चलाना है। घर में क्या करना है? सोना है रात को, बस भोग करना है, खाना है, पीना है, बस यही, और क्या? यही तो कुछ कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? ऐसे दिन और रात दोनों खराब हो रहे हैं, दिन और रात दोनों खराब हो रहे हैं। और इसी को हम कहते हैं कि हम बहुत बड़े एडवांस हो गए हैं। प्रभुपाद ने लिखा है इसके लिए बड़ा सुंदर शब्द लिखा है, मटेरियलिस्टिक वे ऑफ लाइफ इज डिस्क्राइब हियर इन ए नटशेल, एंड हाउ फूलिशली मैन वेस्ट द बोन ऑफ ह्यूमन लाइफ इज डिस्क्राइब फॉर। तो ऐसे इसी काम में अगर सब लगे हैं और हमेशा के लिए लगे हैं तो अपना जीवन व्यर्थ कैसे जाता है वो यहां बताते हैं सुखदेव गोस्वामी। देहापत्य कल्त्रादीशो आत्म सैन्येशो असत्वापि तेषां परमतो निधनम पश्यन्नपि न पश्यति। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि देखते हुए भी अंधे हैं। क्या देखते हैं? मॉरिशस के अंदर आप ऐसे सोचो, आप तो यहां नहीं आए, पिताजी आए थे, पिताजी से उसके पिताजी आए थे, तीन जनरेशन या चार जनरेशन पहले आए ना। तो जो पहले यहां मॉरिशस में आपका दादाजी आए थे वो कहां है? कहां गया? इंदिरा गांधी सेंटर में नोटबुक के अंदर पड़ा हुआ है, किताबों के अंदर उसका नाम लिखा है ना,
कि आए थे उसका नाम ही लिखा है ना, कहां गए, कहां गए, हाँ चले गए ऊपर, बच्चों को भी पता है ऊपर चले गए, हाँ। और दूसरे उनके बेटे कहां चले गए, अब हम उनके पोते हैं, हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे, और हमारे बेटे जब बड़े होंगे उनके बेटे होंगे तब वो भी जाएंगे कि नहीं जाएंगे। यही कह रहे हैं कि हम समझ रहे हैं कि हमारी रक्षा करेंगे, कौन कौन हमारी रक्षा करेगी शरीर की, परिवार वाले हमारी रक्षा करेंगे, जिस कुटुंब का हम भरण करते हैं, जिस परिवार को हम पाल रहे हैं, हम सोचते हैं शायद ये बच्चा हमारे को बचा लेगा या ये पतली हमारे को भूखे मरने से बचा लेगी, कुछ खिलाएगी। लेकिन सच बोले, एक बार एक पेपर में लिखा था, हजारों स्त्रियों ने अपने पतियों का मर्डर कर दिया, मेनी वाइव्स किल देयर हस्बैंड, नीचे लिखा था खिला खिलाकर, मारा नहीं, पकोड़े खिलाकर, पूरी खिलाकर, हलवा खिलाकर, चाकू से नहीं मारा था, खिला खिलाकर मारा था, इतना खिलाया था कि बेचारे डायबिटीज हो गया, बीमार हो गया और मर गया। देखा है, वो कह रही इतना थोड़ा सा खा लीजिए, ये खाने से मर जाएगा, बोला कोई बात नहीं हमारे हाथ का तो खा लीजिए। इन सबको सुखदेव गोस्वामी लिखते हैं फॉलेबल सोल्जर, हम समझते हैं ये हमारे सिपाही है जो हमारी रक्षा करेंगे, लेकिन ये स्वयं भी मरने वाले हैं तो हमारी क्या रक्षा करेंगे, डॉक्टर हमारे को बचा लेगा, अरे डॉक्टर भी तो मरेगा कि नहीं मरेगा, यहां जो पहले फ्लेक हॉस्पिटल में आज से 50 साल पहले डॉक्टर थे वो कहां गए, मर गए ना या पड़े हैं अभी, जब वो मर जाएंगे तो हमको कहां से बचाएंगे, तो हम समझते हैं ये सब हमको बचाएंगे, ये सब हमारी मूर्खता है। इसका अर्थ लिखते हैं सुखदेव गोस्वामी कि सब देख रहे हैं कि सब लोग इस दुनिया से मर रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई नहीं तैयारी करता है कि बच नहीं सकते हैं तो मरने से बचने का कोई साधन भी है क्या, इसके बारे में कोई पूछने को तैयार नहीं। अब कहते हैं जो बुद्धिमान लोग हैं जो देखते हैं इसको, उनको क्या करना चाहिए, सबसे बड़ा भय क्या है दुनिया में, मृत्यु का भय सबसे बड़ा है, अगर इस भय से बचना है तो क्या करना चाहिए, ये सुखदेव गोस्वामी का आंसर है, उत्तर है परीक्षित महाराज के क्वेश्चन ए का, सब लोग सब समय सब जगह एक क्या काम करें कि उनको भय से मुक्ति मिले, कि वो भय से मुक्त हो जाएं, उनका मृत्यु का भय समाप्त हो जाए। वैसे देख लीजिए भगवत गीता कब बताई गई, जब चारों ओर मृत्यु का खेल था, सभी मर रहे थे, उसके बीच में भगवत गीता बता के अर्जुन को अमर बना दिया। भागवत कब बताई गई, जब परीक्षित मरने वाला था 7 दिन में। तो ये हमारे शास्त्र मरने के भय को खत्म करने के लिए, तो आप ये श्लोक एंसवर है, ये श्लोक तक हम पढ़ेंगे, तस्मात इसलिए, क्योंकि लोग जीवन व्यर्थ गंवा रहे हैं, मानव जीवन 84 लाख में मुश्किल से मिलता है। एक भक्ति सिद्धांत सरस्वती का एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, एज लॉन्ग एज द डिमांड्स ऑफ बॉडी एंड माइंड आर ड्राइविंग यू आर ड्राइविंग एनीबॉडी ही कैन नेवर कम अबव एनिमलिस्टिक प्रोपेंसिटी। तो क्या है डिमांड बॉडी और माइंड की, खाना कहां है, सोना कहां है, सेक्स कहां है, और अपने आप को बचाऊंगा, ये चार चीजों के लिए भाग रहे हैं ना, दीज आर द डिमांड्स ऑफ द बॉडी एंड माइंड, खाना, सोने के लिए जगह चाहिए, और भोग के लिए स्त्री पुरुष, पुरुष को स्त्री, स्त्री को पुरुष चाहिए, और अपनी रक्षा के लिए कोई, ये चार चीजें, तो ये बॉडी की डिमांड है। जब तक यही हमारा प्रायोरिटी है तब तक हम कभी एनिमल के स्टैंडर्ड से ऊपर नहीं आ सकते। प्रभुपाद इसको बोलते हैं दिस इज डॉग सिविलाइजेशन। और डॉग क्यों कहते हैं, क्या कहते हैं, कुत्ता अभी आएगा आपके सामने, आप खा रहे हो, आप उसको डंडा दिखाओगे हट तो जाएगा, भागेगा, फिर वापस आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, ऐसे ही उस कुत्ते की तरह प्रभुपाद जी कहते हैं अभी भी हम वही काम कर रहे हैं जो हमारे दादा बाबा कर गए और हट गए, उनको वो मर गए, हम मर रहे हैं, वही काम कर रहे हैं। तो हो सकता है कि हम चार पहियों वाली गाड़ी के ऊपर दौड़ रहे हैं, कुत्ता चार पांव पे दौड़ रहे हैं, लेकिन कुत्ते से ज्यादा हमारी बुद्धि विकसित नहीं है। ए डॉग सिविलाइजेशन, ये गार्ड सिविलाइजेशन नहीं है, डॉग सिविलाइजेशन। ये चार चीजें घर में रखना, ये शुरू करोगे तभी जीवन अपना। तो क्या करना चाहिए? तस्माद, इसलिए भारत हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ महाराज परीक्षित, सर्व आत्मा, भगवान जो सर्व आत्मा है, सबके हृदय में रहता है, जो सबसे प्रेम करता है, भगवान जो जिसको जिसकी पूजा करनी चाहिए, जिसका भजन करना चाहिए, ईश्वरो, नहीं करोगे तो डंडा हाथ में लेके ईश्वर है, वो ईश्वर है, नहीं तो ईश्वर का मतलब चलाने वाला वो है। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, ब्रह्मायम सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि माया। गाड़ी को जैसे ड्राइवर चलाता है, ऐसे इस शरीर को भगवान चला रहे हैं, तो वो ईश्वर है और हरि भी है। चार नाम लिखे भगवान के, सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि ही। हरि का अर्थ है जो अपने भक्तों के दुख हर ले और प्रेम देकर मन भी हर ले। उस हरि के लिए क्या करना चाहिए? श्रोतव्यम, सुनना चाहिए उसके बारे में, और सुनने से जब दिल भर जाए, हाँ बहुत सुना, तब क्या करना चाहिए? कीर्तत्वम, तब जाके किसी को सुनाना चाहिए। जब सुनने वाला हो, सुनाने वाला हो तो सुनना चाहिए, जब कोई सुनने वाला है तो सुनाना चाहिए, जब दोनों नहीं है तो फिर स्मर्तव्यम, तो जो पहले सुना है उसको याद करना चाहिए। और कहते हैं श्रोतव्यम कीर्तव्यश्च, श्रोतव्य कीर्तव्यश्च स्मृतस्य च यदिच्छति अभयम्। अगर मृत्यु के भय से मुक्त होना चाहता है कोई भी, तो भगवान हरि सर्वात्मा ईश्वर के बारे में सुनना चाहिए, उसका कीर्तन करना चाहिए और उसका स्मरण करना चाहिए, फिर मृत्यु के भय से मुक्त हो जाएगा। तो ये कृष्ण भावना, ये स्कान प्रभुपाद ने स्थापित किए, कृष्ण कथा आप सब लोगों को सुनने का अवसर देने के लिए, मौका देने के लिए, इट इज अपॉर्चुनिटी फॉर द ह्यूमैनिटी टू हियर कृष्ण कथा। स्कान का एक ही काम है, एक ही काम है कि कृष्ण कथा, कृष्ण कीर्तन, ये दो सब जगह, जो आपकी तरह समझदार है उनके लिए मंदिर बनाया है कि आके कथा सुनो, जो अभी तक मूर्ख है नहीं आते हैं उनके लिए रोड के ऊपर जाके कीर्तन करो। दोनों काम हमको कर रहे हैं। और तीसरे, पुस्तक उनको जबरदस्ती देकर आओ, ये पुस्तक उनको जबरदस्ती देकर आओ। कभी न कभी किताब खोलेगा जब दुखी होगा तो उसको उसके अंदर से प्रभुपाद बोलेंगे और उसका प्रचार करके उद्धार कर देंगे। तो ये, और पुस्तक प्रचार बार कीर्तन करने जाओ तो हो सकता है लोग आपकी तरफ ध्यान नहीं दें, तो जरा लड्डू उसको दिखाओ कि हेलो आए आजा प्रसाद लो, प्रसाद सभी लेने के लिए आएंगे। जब प्रसाद लेने आएंगे तो कान के अंदर हरे कृष्ण जाएगा। यही इस कान का उद्देश्य है, कृष्ण कथा, कृष्ण कीर्तन और कृष्ण के स्मरण के लिए, यादगिरी के लिए लोगों को पुस्तक घर में देके आए। तो ये तीन काम हमारा है, हमको यही काम करना है और इसी काम के द्वारा हम सब लोगों का सबसे बड़ा हित कर सकते हैं। हरे कृष्ण, धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है? 53 मिनट्स हुए हैं, घंटा नहीं हुआ, 54 मिनट पूरे हो गए। एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन? किसी का कोई